तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुर।
ओम शांति। हम सभी बहुत महान भाग्यशाली है जो खास शांतिवन से हमारी इस योग भट्टी में तपस्या में चार चांद लगाने के लिए बाबा नए नए महान तपस्वी आत्माओं को भेज रहे और भट्टी में और ही ज्यादा बल बढ़ता जा रहा है। अभी हम सबके बीच में है आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई। हम सब एक हाथ की ताली से आपका इस फुलवाड़ी में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बहुत छोटी एज में यानी बाल्यकाल से ही इस यज्ञ में आपने प्रवेश किया और बहुत सारी वैरायटी प्रकार की सेवाएं कुशलतापूर्वक आप इस यज्ञ को प्रदान करते आ रहे हो। विशेष आपकी दो विशेषताएं हैं, एक है यज्ञ के प्रति वफादारी, ऑनेस्टी, और दूसरा है सच्चाई और सफाई। और जिस दो विशेषता के कारण आपने बहुत ही जल्द यानी बहुत ही कम समय में बड़ों के दिल में स्थान ले लिया है। जब बड़ी दादी जी थे, प्रकाशमणि जी दादी, तब दादी जी के वक्त भी आप रोज दादी जी को मिलने जाया करते थे, यानी दादी जी भी आपको रोज बुलाया करती थी, और अभी दादी जानकी जी भी आपको रोज बुलाते हैं। और यज्ञ के प्रति जो भी नए नए मैसेजेस होते हैं, संदेश होते हैं, आपके द्वारा ही हम सबके पास आते हैं। आपकी बहुत बड़ी और विशेष सेवा है मुरली डिपार्टमेंट, जो बाबा के बच्चों को जिसके बिना नहीं चलता है, तो आप वो डिपार्टमेंट को भी इतना अच्छे से चला रहे हैं। और मुरली के अंदर भी जो खास प्रश्न उत्तर धारणा के लिए मुख्य सार वरदान स्लोगन जो हम रोज पढ़ते हैं, तो आप ज्ञान की बहुत महीनता में जाकर के बाबा के भावों को प्रत्यक्ष करने के लिए गहराई से चिंतन मंथन करके हम सबके बीच में पहुंचाते हैं। खास यज्ञ से जो स्वउन्नति के प्रोग्राम आते हैं वो भी आपकी ही रचनात्मकता का बहुत बड़ा योगदान है। साथ साथ हमारी जो विंग से उसमें रूलर विंग, ग्राम विकास विंग है, उनके आप आबू यानी माउंट आबू कोऑर्डिनेटर है, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, और बहुत अच्छी तरह से आपने कम समय में ग्राम विकास विंग की सेवाओं को भी पूरे भारतवर्ष और साथ साथ विदेश के भी काफी स्थानों में, जो हम योगिक खेती के बारे में सुनते हैं या काफी लोग जानते भी हैं, तो ये आपकी ही रचनात्मकता है। तो ऐसे बहुत महान तपस्वी हम सबके बीच में हैं। फिर से एक बार आपका स्वागत करते हुए आज का आपका विषय है आत्मशुद्धि का एकमात्र उपाय गहन तपस्या। आत्मशुद्धि का एकमात्र उपाय गहन तपस्या। आदरणीय राजू भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। आप सबको देख करके ऐसे लग रहा है कि आप सब बहुत अच्छी गहन तपस्या कर रहे हो। मधुबन की इस तपस्या भूमि में तपस्या का चांस मिलना भी एक बहुत बड़ा भाग्य है, और पहला चांस आप सबने लिया है इसी जन का। मैं समझता हूं यहां तो योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। करनी पड़ती है क्या? बाबा का घर जहां पर स्वयं आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, जहां हमारी दादियों ने दीदियों ने तपस्या की, मुख्य भाइयों ने तपस्या की, उनकी तपस्या के वाइब्रेशन इस भूमि पर ऑटोमेटिक तपस्या की ओर प्रेरित करते हैं। नई आत्माएं भी आती हैं तो यहां से तपस्या द्वारा निकलने वाले वाइब्रेशंस शांति का, सुख का अनुभव करा देती हैं। तो आप सभी ने दो तीन दिन जो यहाँ तपस्या की है, पहली बार मधुबन में कईयों को चांस मिला है रहने का, मुझे तो रहते हुए 44 वर्ष हो गए। मैं अभी शांतिवन वासा नहीं हूँ, शांतिवन से नहीं आया हूँ, मेरा परमानेंट स्थान पांडव भवन ही है। और इस पांडव भवन में शुरू से लेकर के तपस्या के बड़े नए नए अनुभव, नई नई रीति से योग अभ्यास हम सब ने यहाँ किया है। इस मेडिटेशन हॉल में हमारी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, हर शनिवार को रात के 1:30-2 बजे उठा देती थी और कहती थी विशेष तपस्या करनी है, कोई भी विघ्न हो, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसका एकमात्र साधन तपस्या है। तो दादी को ये लग रहता था कि इतने सब पवित्र और योगी बच्चे यहाँ रहते हैं, अगर ये तपस्या में बैठ जाएंगे तो समस्या कहाँ रहेगी, अपने आप हल हो जाएगी। तो जब ये विषय मुझे मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आत्म शुद्धि के लिए गहन तपस्या की जरूरत है। हम सब जानते हैं आत्मा कई विकारों, बुराइयों के अधीन होकर के देहाभिमान के कारण अशुद्ध बनती गई, अपवित्र बनती गई, और उस अपवित्रता को, उस कट को, उस चंक को उतारने के लिए केवल एकमात्र उपाय है गहन तपस्या। और आज बाबा ने तपस्या का बहुत सुंदर अर्थ वरदान में सुनाया था, आप लोगों ने शायद नोट किया हो, एक की लगन में लवलीन हो जाना ही तपस्या है, एक की लगन में मगन हो जाना, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी गहन तपस्या जिसमें मन और बुद्धि की हलचल भी समाप्त हो जाए। अब वो हलचल तो तब समाप्त होगी जब पहले त्याग हो, तपस्या के पहले त्याग बहुत जरूरी है। अगर त्याग नहीं है और तपस्या में हम बैठते हैं तो वास्तव में बार बार बुद्धि उस तरफ खींचती है जिसके अधीन आत्मा हो गई है। इसलिए कुछ बातों का बहुत सहज रीति से त्याग अगर आत्मा कर लेती है और उसमें भी त्याग का वास्तविक स्वरूप है जीवन के अंदर नम्रता आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा विघ्न या सबसे बड़ी अशुद्धि मैं और मेरेपन की है, जिसे बुद्धि मैली हुई है, अशुद्ध हुई है। आत्मा की अशुद्धता में तीनों चीजें आती हैं, एक मन जो भटकता है, चंचल है, अशुद्ध हो गया, हर नेगेटिव बात को चिंतन करना शुरू कर देता है, व्यर्थ की तरफ भटक जाता है। मन की शुद्धता के लिए कुछ प्लान बनाने होंगे। फिर बुद्धि हमारी बिल्कुल साफ स्वच्छ ठीक निर्णय करे, इतनी लाइट हो, इतनी हल्की हो, उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी। और फिर संस्कार जो बिल्कुल पतित विकारी देहमान वाले बन गए उनको शुद्ध करना होगा, तब आत्मा को कहेंगे ये स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है। अब मन की शुद्धता के लिए, अशुद्धता के विषय में मैं विस्तार नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं आज अशुद्ध मन क्या क्या कर रहा है, लेकिन इसको शुद्ध बनाने के लिए बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी विधियां बताई हैं। मन की शुद्धता के लिए सबसे पहली आवश्यकता है मौन की, मन का मौन, मुख का मौन। अगर बहुत बाहर की बाह्य मुक्तता का आकर्षण है, आत्मा बहुत सारे रसों में आकर्षित होती रहती है तो मन भटकता रहता है। इसलिए बीच बीच में तपस्वी आत्माएं अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए ये व्रत लेती हैं। वैसे भी इस यज्ञ में सोमवार के दिन विशेष मौन रखते थे। अभी भी कई स्थानों पर हमारी निमित्त बहनें सोमवार को या गुरुवार को विशेष मौन रखती हैं, टर्न बना लेती हैं कि एक दिन हफ्ते में हम मौन में रहेंगे, लेकिन केवल मुख का मौन नहीं। वो तो कॉमन बात है, बहुत से मौनी लोग हैं जो बोलते नहीं हैं, लेकिन संकल्पों का भाव उसको रोक लेना, उस पर कंट्रोल होना, इसको कहते हैं यथार्थ मौन, जिससे हम आत्मा का निरीक्षण कर सकें, मैं जो हूं जैसा हूं अपने स्वरूप को निहार सकें, देख सकें, अपने स्वरूप में स्थित हो सकें, उसके लिए मन का मौन बहुत जरूरी है। और साथ साथ जिस तरफ भाव है, बाबा ने हम सबको विधियां बताई हैं कि बहुत व्यर्थ संकल्पों में हमारा समय और शक्ति जाता है, इसके लिए मनन शक्ति का, मनन चिंतन का अभ्यास चाहिए। जितना आप बाबा की मुरलियों पर, बाबा की कोई अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर, वरदानों पर, स्लोगन्स पर मनन करें, चिंतन करें, इसके लिए समय देना पड़ता है। और अभ्यास जब हो जाता है तो कोई भी एक बात को लेकर के उस पर हम अपने मन को लगा सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है जिसको आदत है सारा समय चलने की, शून्य नहीं होता, उसको कहीं न कहीं संकल्प चलाने ही चलते ही हैं, चाहे अच्छे चलें, चाहे बुरे चलें, चाहे कोई भी संकल्प आए, लेकिन उसका काम ही है संकल्प, जो सारा कल्प चलता है वो चलता ही रहता, रुकता नहीं है। बाजा मिल गया, शरीर मिला, आत्मा आई शरीर के अंदर, कुछ न कुछ सोचती रहेगी। लेकिन राजयोगी आत्माएं, तपस्वी आत्माएं अपने सोचने पर बहुत अटेंशन रखती हैं, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। अगर सोचने पर, चिंतन पर हमारा ध्यान आ गया, इस पर कंट्रोल हो गया, तो हम मन को जिस स्वरूप में और जितना समय स्थित करना चाहें, बहुत समय तक हम स्थित कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आधा घंटा योग करने बैठते हैं, एक घंटा योग होता है, बहुत टेंशन से बैठने के बाद ये मन कंट्रोल में आता है, नहीं तो दो मिनट चार मिनट एकाग्रता रहती है और फिर कहीं न कहीं इधर से उधर भटक जाता है, भटका देता है। अटेंशन है, उस लगन में मगन है, आत्मा एक के प्यार में खोई हुई है, तो सहज एकाग्र होकर के बाबा के साथ जुड़ करके खूब अच्छे अच्छे अनुभव करती है। और अगर थोड़ा भी कोई शरीर में कहीं दर्द है, कहीं संबंध है, कहीं कोई ने कभी दुख दिया है, धोखा दिया है, कहीं कोई हिसाब किताब है बने हुए, तो मन एक सेकंड में वहां पहुंच जाता है, देर नहीं लगती, संकल्प वहीं चले जाते बार बार। इसलिए इसको मोड़ना ज्ञान और योग के, मनन और चिंतन के आधार से बहुत आवश्यक है। और बीच बीच में मन का मौन के साथ एक बाबा दूसरा न कोई, इसको एक मर्यादा की लकीर के अंदर बांध देना, क्योंकि बहुत सारी जगह जो भटकता है, इसके लिए इसको कहा गया है लक्ष्य मन रेखा। अगर मन को मर्यादा की लकीर के अंदर बांध देते हैं कि ये मर्यादा है, इसके बाहर नहीं जाना है, इसी के अंदर रमण करना है, तो योग को निरंतर बनाया जा सकता है। गहन तपस्या के लिए सारे दिन का योग चाहिए, कहीं पर भी सारे दिन में मन व्यर्थ में उलझ न जाए। अब इसके लिए एक सर्किल है, एक लकीर है, एक बाउंड्री हम कहें, कभी बाबा के साथ बहुत प्यार से रूह ध्यान करो, अपने भाग्य का चिंतन करो, कभी कोई ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें रमण करो, मनन चिंतन में ले आओ, कभी डबल लाइट स्वरूप में स्थित होकर के फरिश्ते स्वरूप में बाबा के वतन की सैर करो, वतन से सकाश दो, सेवा करो, कभी बीज रूप बन करके बाबा के समान परम धाम की ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। वैरायटी है, लेकिन कहीं न कहीं मन को बिजी करना जरूरी है। जैसे बाबा ने कुछ साल पहले 5 स्वरूपों की ड्रिल सिखलाई कि बच्चे ऐसे ऐसे ड्रिल करो, सुदर्शन चक्र साकार में बाबा कहते थे, अव्यक्त रूप में हम सबको 5 स्वरूप, अपने अनादि स्वरूप को याद करो, अपने आदि स्वरूप को याद करो, पूज्य स्वरूप को याद करो, ब्राह्मण स्वरूप को याद करो, फिर फरिश्ते स्वरूप को याद करो। तो 5 स्वरूप बाबा ने इतने सरल ढंग से सुनाए कि सारे दिन में हम किसी न किसी एक स्वरूप में रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए मन को बहुत इन सब बातों के प्रति बहुत प्यार चाहिए, बहुत लगन चाहिए, और इससे प्राप्तियां क्या हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि ये हमें इससे प्राप्तियां होंगी। तो आत्म शुद्धि के लिए मन को बहुत शुद्ध बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर ही बहुत सारी व्यर्थ कीचड़ा भर गया है, इधर उधर की बातें आ गई हैं, कुछ न कुछ नेगेटिव देखने की, सोचने की, बोलने की, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उनके प्रति भी देखते ही फट से बुद्धि चल जाती, ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां भी ऐसे होता, ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है, कई प्रकार के विचार मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। कई बार हम उनका वर्णन नहीं कर पाते, लेकिन अंदर ही अंदर संकल्प अपने आप को परेशान करते हैं, इसलिए इन संकल्पों को मोड़ने की जरूरत है। रोक नहीं सकते, रोकने से आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है, मन टेंशन पैदा कर सकता है, और कई लोग जब रोकते हैं तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। देखा हो आपने, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सोच सोच करके एकदम स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए सोचने की जो आदत है, उस आदत पर थोड़ा सा ध्यान दें, किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, और जिन बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेना देना नहीं है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, मान लो आज कुछ भी यज्ञ के अंदर कोई नीचे ऊपर बात हो रही है, हमें पता है हो रही है, हमको कोई सुना भी रहे हैं, बड़ा समझ के भी सुना रहे हैं, और हम जानते हैं कि अगर हम संकल्प इसके लिए चलाएंगे या कुछ बोलेंगे तो ये बिगड़ने वाली बात है, सुधरने वाली नहीं है, तो हम उसको सपोर्ट देने की बजाय बाबा ने बड़ी अच्छी विधि बताई है कि अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो शुभ भावनाओं का दान दो, शुभ चिंतन करो। बड़ी अच्छी विधि है, अगर शुभ संकल्प चलाएंगे, बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे तो नेगेटिव बात परिवर्तन हो सकती है, नहीं तो बोलने से कहीं न कहीं और संबंध बिगड़ जाते हैं, दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कोई बात ऐसी आती है तो अधिक सोचना नहीं है, बाबा कहता विस्तार में नहीं जाओ, उसके सार को समझ करके अपने शुभ भावनाओं के संकल्पों के आधार से उसको परिवर्तन करो। संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसको व्यर्थ नहीं जानो, तो बचाओ, और जितना ये एकाग्र हो जाएगा उतना बहुत अच्छी रिजल्ट इसकी आपको दिखाई देगी। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को अपनी उन्नति के लिए, साधना करने के लिए बहुत अच्छी तपस्या चाहिए। साधना है ये, साधना, साध लिया जैसे, उस बात को रोक दिया, तो ऐसी बात जो मेरे काम की नहीं है उस पर अपनी बुद्धि को चलाना नहीं है। और बुद्धि की स्वच्छता के लिए, बुद्धि में दिव्यता आए, समय पर ठीक निर्णय कर ले, यथार्थ निर्णय कर ले, उसके लिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे गुणग्राही दृष्टि रखो। हर आत्मा विशेष है, भगवान की नजर पड़ी है उसके कार्य में, वो सेवा में सहयोगी है, बाबा की पालना में पल रहा है, कोई न कोई विशेषता उसके अंदर जरूर है। अगर उस गुणग्राहिकता की दृष्टि से हम उसकी विशेषताओं पर नजर डालते हैं तो उसके प्रति हमारे नेगेटिव विचार समाप्त हो जाते हैं। एक और बात है कि अगर हम अपनी बुद्धि को बहुत लाइट रखना चाहते हैं, हल्का रखना चाहते हैं, क्योंकि बोझ है तो योग नहीं लगेगा, उड़ती कला का अनुभव नहीं होगा, इसके लिए बाबा हम सबको एक बड़ा अच्छा स्लोगन देते हैं, बच्चे क्षमा करो और क्षमा ले लो। जिन्होंने आपके साथ ऐसी कोई बातें की हैं, जिनके संकल्प विचार बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे इस जन्म में हुई हैं घटनाएं, कोई ने दुख दिया है, कोई ने दर्द पहुंचाया है, कोई ने धोखा दिया है, कोई ने छल कपट से कुछ किया है, और उनको हम दुश्मन मान करके, वैरी समझ करके उनके प्रति अपना दृष्टिकोण नेगेटिव रखते हैं, तो वो संकल्पों का बोझ बनता जाता है और वो बोझ हमारे योग में बहुत विघ्न डालता है। अगर गहराई से आप देखेंगे, हम लोग जब कोई भी प्रकार की खेती की बात भी करते हैं तो हम कहते हैं हमने प्रकृति को बहुत दुख पहुंचाया है, इसे क्षमा मांगो। व्यक्तियों को भी हमने कोई भी प्रकार से परेशान किया है तो उनसे भी हम क्षमा मांगे, और अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है या किया है तो जरूर हमसे कभी कुछ हुआ होगा, इसलिए हम उसको सहज रीति से माफ करें, क्षमा कर दें, जिससे बुद्धि बहुत लाइट हो जाए। अगर लाइट नहीं है, हल्कापन नहीं है, तो तपस्या के अंदर बार बार बुद्धि वहां भटकती रहेगी। इसलिए बुद्धि योग है, बुद्धि को बहुत स्वच्छ और हल्का बनाने की जरूरत है। जिसकी स्वच्छ और हल्की बुद्धि है वो बैठते ही बाबा के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। गहन तपस्या शब्द सुन करके डिस्टर्ब नहीं हो जाना, कई लोग सोचते गहन तपस्या माना क्या, लेकिन गहन तपस्या का अर्थ ही है एक प्यार में, बाबा के प्यार में आत्मा खो जाए, लव में लीन हो जाए, लगन में मगन हो जाए, उसके लिए बुद्धि की स्वच्छता। और फिर हम आप सब ने 63 जन्म तो देह मन के बस कर्म किए हैं, पार्ट बजाया है, और वास्तव में तो 84 जन्म ही इस देह के साथ हमारा हिसाब किताब रहा है। इसलिए देह मन इतना भर गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, देह मन के अधीनता के कारण आत्मा से कई प्रकार के पाप हुए हैं, बोले हुए हैं, चाहे वो विकारों के अधीन होकर के काम क्रोध के वशीभूत होकर के हुई हैं, चाहे उसके बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, लगाव झुकाव प्रभाव, उनके बहुत गहरे संस्कार हैं। आत्मा किसी के समीप आती ही उसके चक्कर में आ जाती है, उसका अपने आप उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, कहते हम चाहते नहीं थे, पता नहीं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत स्नेह हो गया, और स्नेह होते होते उस समय ही आत्मा के प्रति इतना लगाव झुका हो जाता है जो बाबा दूर हो जाता है, वो संबंध बहुत समीप आ जाता है। इसलिए आत्मा के जो इतने जन्मों के शरीर के साथ हिसाब किताब रहे हैं, एक जन्म में, इस जन्म में नहीं भी हैं, तो भी कोई न कोई आत्माएं नहीं आती हैं, लेकिन वो आते ही अपने आप को आकर्षित कर लेती, उनके साथ लगाव हो जाता, झुकाव हो जाता, कई बार उनके साथ गलत कर्म भी हो जाते। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता, बच्चे बने हुए हिसाब किताब जो पिछले हैं उनको चुकतू करने का टेंशन रखो, तपस्या के द्वारा वो हिसाब किताब संस्कार समाप्त हो जाए और कोई नया हिसाब किताब क्रिएट न हो, कोई से भी नया हिसाब किताब न बने। कैसे बनता है, कैसे बनता है, लेन देन से, लगाव झुकाव से बनता है, नफरत और घृणा से बनता है। किसी आत्मा से विशेष स्नेह हो जाता है तो उसको हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, देते लेन देन करते करते स्नेह में आते आते कुछ न कुछ हिसाब किताब बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर बहुत नफरत है, घृणा है, तो भी जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं तो वही आत्मा सामने आती है, उसके और संबंध नजदीक बनते जाते हैं, घृणा से भी नफरत से भी। इसलिए एक बहुत अच्छा स्लोगन है, ना काहो से दोस्ती ना काहो से वैर, कोई से गहरी दोस्ती भी न हो जाए और किसी से वैर भी नहीं, क्योंकि हर आत्मा अपना अपना ड्रामा के अंदर बड़ा अच्छा पार्ट बजा रही है। इसके लिए साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास चाहिए। साक्षी दृष्टा, सबके पार्ट को देखो, संबंधों को देखो, संपर्क संबंध में आने वाली आत्माओं के पार्ट को देखो, सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन उस अच्छाई की तरफ आत्मा प्रभावित न हो जाए। प्रभावित हो जाएगी तो जरूर कहीं न कहीं चक्कर शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई भी बंधन, दादी जानकी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न कुछ दिन पहले पूछा था, सभा में पूछा, आपको मुक्ति धाम में जाना है या आप मुक्त हो? सोचने की बात, जाना तो है मुक्ति धाम, लेकिन उसके पहले हम अपने बंधनों को चेक करें। क्या हम बाबा से, जिस दिन से हम बाबा के बने, बाबा कहता है मेरे बच्चों को एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा एक सेकंड में मैं देता हूं, तो मैं बाबा का जिस दिन बच्चा बन गया, निश्चय हो गया, भगवान मिल गया, उसका बच्चा मैं बन गया, उसी सेकंड मैं मुक्त हो गया, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल गई। जीवन में तो रहना है, लेकिन बुराइयों से, विकारों से, इन सब हिसाब किताबों से मुक्त स्थिति का अनुभव हो। जब तक मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं है, तब तक गहन तपस्या नहीं हो सकती। इसलिए मुक्त स्थिति के ऊपर बहुत ध्यान देना, क्योंकि कई प्रकार की सेवाएं भी आत्मा को बंधन में बांध रही हैं। कई प्रकार के हिसाब किताब नए नए खुलते जाते हैं और आत्मा बंधन में बनती जाती है। इसलिए आत्म शुद्धि के लिए इन बातों का फुल अटेंशन चाहिए। अटेंशन से चलना, टेंशन नहीं लेना, लेकिन बहुत लाइट होकर के, बहुत हल्के होकर के आने वाले हिसाब किताब को देखो साक्षी होकर के, और फिर अपने जो संस्कार हैं, जिस संस्कारों के आधार से कुछ न कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, संकल्प भी चल जाते हैं, विकल्प भी चल जाते हैं, स्वप्न भी आ जाते हैं, कई प्रकार की गलतियां आत्मा करने लगती है, कहते चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया, चाहता नहीं था हो गया, अधीनता हो जाती, आत्मा एकदम परवश हो जाती है। कोई ऐसा दृश्य आता है, ऐसी कोई सीन आती है, ऐसी कोई घटना होती है, ज्ञान एक किनारे रह जाता है और वो कर्म हो जाता है, और होने के बाद पश्चाताप होता है, मैं कि कौन सी आत्मा हूं, बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे से क्यों हो गया। और जब ऐसा हो जाता है तो उसके पीछे बहुत समय जाता है, फिर दिल से कष्ट हो जाती है, निराश हो जाती है, उदास होने लगती है, और ही डिप्रेशन की तरफ चले जाते, कहां उन्नति की ओर जा रही थी, और जब ऐसी कोई गलती हो गई तो उसके पीछे एकदम गिरावट का अनुभव करने लगती है। इसलिए ऐसे समय में स्वयं को क्षमा करना है, ये मेरी गलती नहीं थी लेकिन किसी संस्कार ने करा दी, कोई पिछला ऐसा कोई हिसाब किताब था जो सामने आ गया, मैं फिर से बाबा की शक्ति लेकर के इसको पार कर लूंगा। दिल से कष्ट नहीं होना कभी भी, निराश उदास नहीं होना, लेकिन बाबा की शक्ति लेकर के उस संस्कार को परख करके उस पर विशेष किरणें डालो जिससे वो समाप्त हो जाए, परिवर्तन। तो हम योग तपस्या के अंदर केवल शून्य की स्टेज को अनुभव नहीं करते, लेकिन कोई भी ऐसे संकल्प संस्कार जो हैं उन पर बहुत शक्तिशाली किरणें बाबा से लेकर के उसकी तरफ फोकस करते हैं, जिससे वो संस्कार एकदम पिघल जाएं, समाप्त हो जाएं। हैं हर एक के पास कोई न कोई संस्कार पिछले जन्मों का बना हुआ है, भले ऊपर ऊपर से अगर पूछा जाएगा तो कहेंगे हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बहुत पक्के बाबा के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको कोई बहुत गहराई से देखता है, सोचता है, तो इसलिए नहीं देखना है कि उसको देख करके आप अपनी कमी कमजोरी का चिंतन करते करते निराश हो जाएं, उदास हो जाएं, परेशान हो जाएं, ऐसा नहीं, लेकिन एक ज्ञानी तू आत्मा इस बात को समझ करके चले कि ये ब्राह्मण जीवन के लिए मुझ फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा के लिए कर्म, ये संस्कार, ये संकल्प ठीक नहीं है, ये राइट नहीं है, इस पथ को मुझे चेंज करना है। उसके लिए चाहिए बहुत शक्ति, नहीं तो परवश आत्मा कहीं ना कहीं फिर बार बार वही भूल करती है। तो स्वयं को क्षमा करो और बाबा से भी क्षमा मांगो कि बाबा जो हो गया अब से नहीं होगा, प्रतिज्ञा के रूप में संकल्प क्रिएट करो, फिर से अपने उमंग उत्साह के साथ अगर लगन में मगन होने का फिर अभ्यास करेंगे तो सहज तपस्वी मुहूर्त बन जाएंगे। तपस्या के लिए 6-7 बातें मैं आपको अंडरलाइन कराता हूं। पहले अपनी स्मृतियों को चेक करो, इन स्मृतियों में हमारी याददाश्त शक्ति के अंदर कौन कौन सी बातें हमारे सामने से आती हैं। जब हम याद में बैठते हैं, याद हम बाबा की योग करते हैं बाबा के साथ, लेकिन जब बाबा की याद में बैठते हैं तो बहुत पास्ट की स्मृतियां बार बार सामने आती हैं। पास्ट में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, अवज्ञाएं हुई हैं, गलतियां हुई हैं, वो बार बार सामने आ जाती है। इसलिए उसके लिए बाबा ने एक विधि बताई है, शायद आप सबने अपनाई हो, उसको एक कागज पर लिख डालो और कागज पर लिख करके बाबा के आगे भंडारी में सौंप दो। चाहे नहीं किसी को दिखाओ, नहीं पढ़ाओ, जरूरत नहीं है, बाबा आपकी बात को समझता है, देखता है। अच्छी विधि है, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के आगे रखो और लेकर के जाके आग में डाल दो। संकल्प में दृढ़ता ले आओ कि बाबा ये आज मैंने आपके आगे सुहा कर दी। कोई बातें पास्ट की जो गलत हुई हैं वो स्मृति में ना आए, और जो अच्छे अनुभव हुए हैं उनको रिवाइज करो, रिपीट करो। कभी भी किसी समय भी बहुत अच्छे अनुभव, ऐसा कोई ब्राह्मण आत्मा नहीं है जो किसी घड़ी उसको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव ना हुए हैं, बाबा ने कभी ना कभी कराए हैं, तब वो बाबा का बच्चा पक्का बना है। तो कभी शुरुआत में, ज्ञान के पहले या बीच में या बाद में, कभी योग में बड़े अच्छे अनुभव हुए, कभी स्वप्न में अच्छे अनुभव हुए हैं, कभी किसी स्थान पर गए हैं वहां पर बड़े अच्छे अनुभव हुए हैं, वो यादगार बन गए हैं। और वो यादगार बनी हुई बातें याद रहनी चाहिए। जब योग करो तो उस स्मृतियों को सामने लाओ, कैसा वातावरण था, कैसा माहौल था, उस स्थान पर गए थे, ऐसे अच्छे अनुभव हुए थे। कई जब पहली पहली बार मधुबन में आते हैं, एक भाई यहां आया था, बहुत बड़ा VIP था, मैं अचानक उसके सेंटर पर गया तो गाड़ी चला रहा था, तो कहता है कि मैं अपना एक अनुभव सुनाओ। कहा जरूर सुनाओ, मैं तो अनुभव सुनना चाहता हूं। तो कहता है, भाई जी हमारे पास बहने राखी बांधने आती थी, मैं समझता था पता नहीं पीछे क्यों लगी रहती, बार बार कहती माउंट आबू चलो, माउंट आबू चलो। तो इनको कुछ चाहिए होगा, सहयोग चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, क्या इतना मतलब है, बार बार मेरे को ये कहती है। तो एक दिन मेरे मुख से निकला, अच्छा बहन जी चलो, ज्ञान योग सीखने की भावना से नहीं आया था, घूमने की भावना से आया, चलो माउंट आबू घूम के आएंगे। मैं आ गया माउंट आबू में, माउंट आबू में नहीं आया, शांतिवन के प्रोग्राम में आया। कहता मुझे पता नहीं था ये दादी जी का स्तंभ है, यहाँ पर दादी जी ने उनकी अंतिम संस्कार हुआ है, अस्थियां हैं। मुझे इसे घूमते घूमते वहां बेंच पड़ी थी, मैंने सोचा यहाँ पर मैं बैठ जाऊं, तो मैं वहां बैठा और मैं बैठते बैठते उस स्तंभ की तरफ देख रहा था और मैं गुम हो गया। मैंने क्या क्या अच्छे अच्छे अनुभव किए, 2 घंटे तक मेरी आंखों से आंसू आते रहे और मैं इतना मगन हो गया। मुझे पता नहीं था दादी का स्तंभ है या बाबा का स्तंभ है, मैं तो समझा कोई समाधि है, मैं आकर के यहां बैठ गया। कहता वो पल वो क्षण ऐसे थे मेरे अनुभव के, जो आज तक भी मैं उसको याद करता हूं मेरा योग लग जाता है। और इतना बढ़िया अनुभव हुआ उस दिन से लेकर के मैं बाबा का पक्का बच्चा बन गया। अब कुछ नहीं करने आया था, देखने आया था, घूमने आया था, बहनों के आग्रह पर आ गया था। कहता उस दिन से लेकर के, पहले मैं सबको ब्रह्म कुमारियों के बारे में उल्टा बोलता था, आप कहते तुम गया ना, तुमको जादू लग गया। कौन सा जादू लगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे वो पल भूलते ही नहीं है कि बाबा ने मुझे ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, मुझे 3 लोगों का अच्छा सैर कराया। तो ऐसे कई अनुभव आप लोगों के पास भी होंगे, अभी सुना तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा के बनने के बाद कोई अच्छे अनुभव ना हुए। कभी बाबा के अव्यक्त पाठ के समय एक बहन आई थी, कहती है मैं अपनी सासू माँ को लेके आई थी, मुझे नहीं पता बाबा क्या है, लेकिन माता जी थी 80 साल की उम्र थी, वो बार बार कहे मुझे बाबा से मिला के ले आओ, बाबा से मिला के ले आओ। मैं तो पैंट सूट में रहती थी, तो बहन जी छुट्टी नहीं दे रही थी, फिर सासू माँ ने जब बहुत आग्रह किया तो मेरे को छुट्टी दिया उन्होंने और मैं आ गई। हमने कहा चलो माता जी को तीर्थ करा के लाती हूँ। तीर्थ कराने आई थी, बाबा के आने का दिन था, अनाउंस हो रहा था आज बाबा आएंगे, तो माता जी को मैं तैयार करके लेके गई। 7 नंबर गेट से मुझे चांस मिला घुसने का। मैं पीछे बैठी थी, मेरे बहुत नेगेटिव वेट थी, इधर उधर के संकल्प चल रहे थे, कहा इनका बाबा कैसे आता है, कौन आता है, ये अंग्रेज लोग भी कोई पागल हो गए हैं क्या, भगवान आता है कोई ऐसे। कहती मैं यही सब सोच रही थी, दादी आई तो मेरे और नेगेटिव संकल्प चलने लगे, ये बाबा है क्या, ये तो दादी है, तो फीमेल के अंदर बाबा बोलते हैं। तो मैं ऐसे देखती रही, हमने कहा अच्छा चलो देखें तो क्या होता है। मैं सासू माँ के साथ बाजू में कुर्सी बैठी थी और दादी जब ऐसे ऐसे ध्यान में गई ट्रांस में, तो मैं भी दादी के साथ साथ ट्रांस में चली गई। और ट्रांस में जाते ही बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, अव्यक्त वतन में आते हैं, फिर अव्यक्त वतन से वो आभाव मंडल दादी के तन में प्रवेश होता है। मैं सारा दृश्य देखती रही और देखते देखते मेरे आंखों में वो आंसू आए जो आजू बाजू वाले बैठे थे, कहते क्यों रो रही हो, क्यों क्या हो गया, बाबा आ गए, बाबा आ गए। और बाबा ने मुझे ऐसे गोद में लिया और लेकर के ऐसे ब्रह्मा बाबा की गोद में फेंक दिया। कहती वो दिन आज का दिन मैं बाबा की पक्की बच्ची बन गई। एक क्षण का अनुभव था, वो घड़ी उसकी निश्चय की थी, और उस दिन से लेकर के इतनी पक्की बाबा की बच्ची बनी जो आज देश विदेश में कितनी अच्छी अच्छी सेवाएं कर रही है। तो कई ऐसे क्षण आते हैं योग में गहन अनुभव के, जो बाबा अचानक अनुभव करा देता। आस ऐसी नहीं रखना कि मैं भी कोई ट्रांस में जाऊं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को अपना बनाने के लिए भी कई विधियां अपना लेता है। इसलिए हम सब बाबा के प्यार में समाना सीखे, अनुभव करना सीखे। बहुत एकदम बाबा जो है जैसा है उसको यथार्थ पहचान करके, तपस्या के लिए जरूरी है 3 बातें। त्याग तो हमने सुनाया ज्यादा नहीं है, त्याग की बातें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन तपस्या के लिए आपने देखा होगा एक आसन चाहिए, आसनी पर बैठ के तपस्या होती है, स्थूल में जो तपस्या करने के लिए बैठते हैं तपस्वी, पहले आसन चाहिए, कुटिया चाहिए या कोई वृक्ष चाहिए, वृक्ष के नीचे तपस्या की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। बौद्ध वृक्ष देखा होगा गया में है, कितने लोगों ने, जितने महान आत्माएं पुरुष में हैं उन्होंने तपस्या की तो किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके की, या किसी न किसी कुटिया में बैठ करके की, और आसनी जरूर है, आसनी पर बैठ करके की। बाबा ने भी हम सबको सहज योगी तो बनाया है, लेकिन ये तीनों चीजें दी हैं। आप जब तपस्या में बैठते हो तो एक रस स्थिति का, साक्षी स्थिति का आसन चाहिए, हलचल नहीं चाहिए, तन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, भावनाओं की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, जितनी एकाग्रता आप कर सकते हो तपस्या के अंदर, एक टिक की स्थिति, संकल्प चलेंगे, ऐसा नहीं शून्य में चले जाओगे, लेकिन वो अनुभव के संकल्प हैं, प्यार के संकल्प हैं, उसके स्वरूप को देखने के संकल्प हैं, और जब एकाग्रता का आसन मिल जाएगा, आत्मा उस स्थिति में स्थित हो जाएगी। भ्रकुटि का आसन एक कुटिया है, भ्रकुटि की कुटिया में आत्मा बैठती है। अभी जब हम अभ्यास करेंगे, कराएंगे, तो आप पहला अभ्यास ये करना कि मैं एक भ्रकुटि की कुटिया में चमकती हुई तपस्वी आत्मा विराजमान हूं, और भ्रकुटि की कुटिया जाने की कहीं जरूरत नहीं, यहीं पर बैठी हैं, लेकिन अपने सूक्ष्म शक्तियों को, मन और बुद्धि को इस संसार से, इस जगत से पार बाबा के वतन में ले चलना है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन का अनुभव हम मन और बुद्धि के विमान से कर सकते हैं, आत्मा कहीं निकल के नहीं जाती। ट्रांस में भी जाती है तो आत्मा निकल के नहीं जाती। आत्मा तो शरीर के अंदर अगर निकल जाएगी तो शरीर तुम पानी हो जाए, मिट्टी हो जाएगा। इसलिए संकल्प की गति ही योग में अनुभव कराती है। तो हम सब भ्रकुटी की कुटिया में चमकती हुई मणि को बहुत सूक्ष्म रूप में देखते हुए अपना मैं जो हूं जैसा हूं स्वरूप में स्थित होकर के बैठते हैं, और फिर कभी कभी अनुभव करते हैं जैसे मैं इस पूरे कल्प वृक्ष के तने में बैठी हूं। जैसे कल्प वृक्ष का चित्र है ना, पूरा ज्ञान इमर्ज है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। कैसे बीज से तना निकला, तने से फिर डालियां निकली, डालियों से फिर पत्ते निकले, फिर ये आदि में सतो प्रधान स्टेज है, मध्य में रजो प्रधान स्टेज है, अभी ये झाड़ की तमो प्रधान स्टेज है, और इसका विनाश इसका परिवर्तन बहुत समीप है। इस ज्ञान को इमर्ज रखना है, शून्य की तरफ नहीं जाना, इसको इमर्ज रख करके मैं बैठी हुई तपस्वी आत्मा पूरे वृक्ष को शक्तियों का जल दे रही हूं। जैसे बहुत सुंदर शक्तियां सकाश के रूप में पूरे वृक्ष पर जा रही हैं। मैं तपस्वी आत्मा आसन लगा के बैठी हूं और भ्रकुटी आसन से सबके पास शक्ति पहुंच रही है। ये अनुभव है भिन्न भिन्न, जो हम योग में अगर करते हैं तो मन और बुद्धि का भटकाव बंद हो जाता है। तो पहली बात है अपनी स्मृतियों को चेक करो, स्मृतियों में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको याद करो, चिंतन में ले आओ। दूसरी बात, स्थिति एक रस अचल अडोल, हिले नहीं, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी लाइट चली जाए, कभी पंखा बंद हो जाए, कभी कोई हलचल हो, कभी कोई बात आजू बाजू हो रही हो, होने दो। कई बार क्या होता है, हमारे बाजू में अगर कोई एक सुस्ती करना लगता है ना, वासी लेता है, ऐसे झुटका खाता है, तो बार बार उसकी तरफ ध्यान जाता है, उसमें स्थिति डगमग हो जाती है, संकल्प चलने लगती है, देखो योग करने आया, ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कोई भी ऐसे संकल्प आए, नहीं, मेरी स्थिति का आसन एक रस अचल है अडोल है, ये सब होगा, होने दो, मुझे नहीं देखना। लेकिन मुझे एक बात का जरूर त्याग करना है, तपस्या में सबसे बड़ा विघ्न है सुस्ती का। जब हम योग में बैठते हैं, थोड़ा समय संकल्प को शांत करने का अभ्यास करते हैं, तो शांत होते होते ही निद्रा देवी आ जाती है। कईयों को आदत होती है, बैठेंगे योग में 5 मिनट भी अच्छे अनुभव करने की बजाय शांत हुए और लहरें आने लगते हैं। अच्छे वातावरण में, इतना अच्छा शाम का वातावरण होता है, इसमें भी कईयों को आ जाते हैं। चलो कोई को बीमारी है, कोई कारण है, वो अलग बात है, लेकिन बिना कारण के बैठे बैठे भी अच्छे संकल्प में अच्छे वातावरण में होते हुए भी जब हम शांत स्वरूप स्थिति में बैठते हैं तो नींद आने लगती है। इसलिए ध्यान रखना, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य का त्याग करेंगे तो तपस्या कर सकेंगे। और दूसरा एक रस है, पता कौन सा, बहुत चटपटा अटपटा तामसिक और राजसिक भोजन मन को बहुत परेशान करता है, इंद्रियों को उत्तेजित कर देता है, मन को शांत होने नहीं देता। इसलिए एकाग्रता के लिए, तपस्या के लिए बड़ा जो मिलता है सादा सीधा भोजन मन की शुद्धता के लिए बहुत जरूरी है। भोजन तो खाना है, भोजन को छोड़ करके योग करेंगे तो योग नहीं लगेगा, लेकिन अति नहीं, कोई चीज के स्वाद रस उसके पीछे आत्मा न जाए। शरीर को चलाने के लिए जितना जरूरी उतना लेना है, आसक्ति बस नहीं। तो भोजन जो हमारा बहुत व्यर्थ और इधर उधर का जा रहा है उस पर परहेज हो जाए। और तीसरा, कोई भी प्रकार का दिखावटी बनावटी रूप नहीं चाहिए। कई लोग योग में ऐसे बैठे दिखावटी बैठे हुए हैं, जैसे एक नेचुरल योग है, नेचुरल तपस्या है, ना आंख बंद करना है, ना चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करना है, ना कोई ऐसे झुक के बैठना, ना ऐसे आंखें करनी। कहीं बैठ जाते हैं तो देखो तो ऐसे लगता है सबका योग तोड़ दिया इसने, आंखें कोई ऐसे चढ़ाता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे कर। अरे योग माना है बाबा की याद ना, बाबा का प्यार, बाबा के स्नेह में आत्मा समाई हुई है, चेहरे पर क्यों टेढ़ा मेढ़ा रूप आता है, बहुत नेचुरल योगी बनो, सहज योगी। आपको देख करके कोई ये न कहे पता नहीं इसको क्या हो रहा है, कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे संकल्प तो है। दिखावटी और बनावटी रूप नहीं है, नेचुरल बाबा के प्यार में आत्मा खोई हुई है। याद करके बाबा भगवान जो मेरा बाबा बन गया, उससे मैं बात कर रही हूँ, उससे मिलन मना रही हूँ, उससे शक्तियां ले रही हूँ, वो हमें इतना भरपूर कर रहा है, ऐसे ऐसे संकल्प करके उसकी शक्तियों का आवाहन कर योग हो जाएगा। साथ साथ जो हद की इच्छाएं है ना, हद की कामनाएं बहुत लेके आत्माएं आती है। अपनी सूक्ष्म कामनाओं को चेक करो, बहुत सूक्ष्म हद की कामनाएं हैं, नाम की, मान की, शान की, पद की, पोजीशन की, ये चाहिए ये चाहिए, ये क्या चाहिए मुझे, सोचो विचार करो क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। आज मेरा महिमा हो गई, नाम हो गया, प्रशंसा हो गई, मैं खुश हो गया, और कल मेरी कोई ने गलानी कर दी, कोई ने इधर उधर बात कर दी और मेरा डिस्टर्ब माइंड हो गया। कुछ नहीं चाहिए आत्मा को, इस समय ऐसी स्थिति बना लो कि मैं आत्मा एकदम तृप्त हूं, सब कुछ बाबा आपने मुझे दे दिया, जो महिमा देनी थी, जो सम्मान देना था मुझे, जितना दिया उतना, और क्या इंसान देगा, क्या इंसान के पीछे हम जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, इस स्थिति में स्थित रहो, योग बड़ा सहज है। जहां इच्छाएं हैं वहां पर बहुत भटकना है, कहते इच्छाएं कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी, इसलिए इच्छाओं के पीछे मृग तृष्णा के समान, मृग की तृष्णा जैसे होती है, हिरण भागता है, समझता वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, रेत के अंदर रेगिस्तान में भागते भागते उसके प्राण निकल जाते, पानी नहीं मिलता। बाबा कहता बच्चे ये तो सब मृग तृष्णा समान इच्छाएं हैं, अगर एक पूरी होगी तो 10 खड़ी हो जाएंगे, इसलिए हद की कोई भी कामना कोई भी इच्छा उसका त्याग चाहिए। तपस्या के लिए सचमुच तपस्या करनी है तो ध्यान रखना कोई भी कामनाएं मुझे परेशान न करे। लगाओ झुकाओ प्रभाव दबाओ, जहां पर भी आत्मा कोई भी किसी बंधन में बंधी हुई है उसको कैंची लगा दो। ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है, साक्षी दृष्टा होकर के देखो और पार्ट प्ले करो, मना नहीं करता, संबंध नहीं निभाओ, सब संबंध निभाओ, लेकिन संबंध निभाते हुए न्यारे और प्यारे बनकर, बहुत सुंदर बैलेंस, जैसे बाबा ने करके दिखाया, दादियां करके दिखा रही हैं, सबके बीच में रहते भी एकदम न्यारी प्यारी सबकी हैं, कोई की नहीं है, ये स्थिति बन जाएगी तो आप देखेंगे एकदम तपस्वी लगेंगे। तपस्या करने की जरूरत है बैठ करके, तपस्या का अर्थ है वास्तव में दृढ़ता संपन्न संकल्प, निश्चय और नशे में दृढ़ रहना ही तपस्या है। कोई योग में बैठ करके आंखें बंद करके या एक आसन पर बैठ करके स्थूल रूप में हट करके टांग पर टांग चढ़ा करके बैठना तपस्या नहीं है, वो तपस्या तो हट योगी कर रहे हैं, हम तो राजयोगी सहज योगी हैं, स्वतः योगी हैं, कर्म योगी हैं। हमारी तपस्या है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है, जितेंद्रिय आत्मा बनी हुई है, कोई इंद्रिय धोखा नहीं दे रही है, माना मैं तपस्वी हूं, कोई चीज मुझे परेशान नहीं कर रही है, मैं आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त भाव से चल रही हूं, माना मैं तपस्वी हूं। तो ऐसी तपस्या जिसके अंदर संस्कारों के अंदर दिव्यता दिखाई दे, शुद्धता दिखाई दे, पवित्रता दिखाई दे, कर्म में वो प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे, कहेंगे तपस्वी आत्मा है। हमने दादियों को बाबा को साकार में भी देखा, अव्यक्त रूप में भी देख रहे हैं, दादियों को देख रहे हैं कैसे तपस्वी मूर्त हैं। कोई बैठ करके तपस्या कर, चलो आधा घंटा एक घंटा नियम बनाया वो बैठते हैं, लेकिन दृष्टि से मुस्कुरा करके देख करके बात करना, उनको संतुष्ट करना, उनको हर प्रकार से भरपूर करना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, तपस्वी आत्मा दिखा रहे हैं दृष्टि से बोल से कर्म से, ये तपस्वी हैं। इन्होंने अपनी एक एक कर्म इंद्रिय को जीता हुआ है, कोई धोखा नहीं दे रही है, ये तपस्वी हैं। तो ऐसा तप जिससे आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल बन जाए। त्याग है देहमान का और तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति की। अब तीसरी बात है, अपने स्वरूप को देखो तपस्या के अंदर। स्वस्वरूप में स्थित होकर के आत्मा के स्वरूप को देखो, जो कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था, स्वस्वरूप में स्थित होकर के स्वस्वरूप के जो निजी गुण हैं, आनंद, प्रेम, शांति, सुख, ज्ञान, उन गुणों के सागर में समा जाओ। ये तपस्या है। स्वरूप को देखना माना, मैं एक लाइट हूं, मैं एक माइट हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं इस भ्रकुटी आसन पर हूं, ये चिंतन करो और उस स्वरूप में स्थित होते होते आनंद का अनुभव कर लो, परमानंद का। कहते योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है। गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, साकार में मिलन मनाना, साकार में रूह रिहान करना, साकार के साथ खेलना, हंसना, बहलना, ये तिंद्रिय सुख अनुभव कराता है। लेकिन जो योगी हैं, तपस्या के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हैं, मिलन में खो जाते हैं, समा जाते हैं। और जिन्होंने परमानंद का अनुभव कर लिया, उन्हें कोई दूसरा आनंद, कोई भी क्षणिक आनंद आकर्षित नहीं करता, सब आनंद उसी में ही है। तो अपनी भावनाओं को देखो, भावनाएं मेरी कहीं भटकती तो नहीं है, एक बाबा में ही संपूर्ण एकाग्र हैं, भावनाएं बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, शुभ हैं, तब संकल्प स्वरूप स्वमान अपने आप स्मृति में रहेंगे। इसलिए योग के लिए कोई न कोई स्वमान सवेरे सवेरे हम लेते हैं। एक अच्छा सम्मान ले लिया, मैं 5 सम्मान स्मृति में आपको दिला देता हूं, प्रैक्टिकल योगी जीवन के लिए। तपस्वी आप अपने आप दिखाई देंगे। एक पहला सम्मान स्मृति में रखो, मैं मस्तक मणि हूं। अभ्यास में लाना है, सिर्फ चिंतन नहीं करना। मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि, इस देह से अलग हूं। कभी बाबा की मस्तक के बीच में, बाबा जहां बैठा है, बाप और दादा के बीच में मैं जाके बैठ जाऊं। संकल्प करोगे, अनुभव होने लगेंगे। संकल्प तो क्रिएट करना पड़ेगा, और ये कोई कल्पना नहीं है, लेकिन एक अनुभव है, क्योंकि बाप दादा के साथ इस समय संगम पर हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। तो संकल्प करो कि जैसे बाप दादा आए, दादी के तन में आए, 3 आत्माएं हो गई, अभी तो त्रिमूर्ति है, लेकिन वैसे कुछ समय पहले दादी की आत्मा सो जाती थी, कुछ पता नहीं चलता था दादी को, अभी जागृत रहती है, समान बन गई ना, अभी 3 आत्माओं का पाठ चल रहा है, पता है आपको नहीं महसूस होता है, अभी दादी की आवाज चेंज नहीं होती है, और कभी कभी बीच बीच में दादी के भी शब्द आ जाते हैं, कई लोग मूंझ जाते हैं, हम लोग नहीं मूंझ सकते, हम जानते हैं। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे तो पता चलता था क्या, वो 2 आत्माएं समान थी और दोनों आत्माओं का पार्ट था। अब दादी अपनी समान स्टेज में है, बाबा के समान है, उसको ट्रांस में जाने की जरूरत नहीं रही ज्यादा, शरीर भी ऐसा है, लेकिन शरीर के साथ साथ अभी दादी की समानता की स्टेज है। बाप दादा बिना ऊपर दादी के गए हुए आ जाते हैं, और फिर दादी की आवाज में बोलना शुरू करते। तो अभी तो 3 आत्माएं हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक दादी बिल्कुल कुछ नहीं जान समझती थी कि मेरे द्वारा बाबा पार्ट प्ले कर रहे हैं। दादी ट्रांस में गई और सो गई, बाबा की बाप दादा आए और पार्ट प्ले किया। बाद में दादी को हम मुरली देते थे टाइप करके, दादी पढ़ती थी, याद आ जाती थी, लेकिन पढ़ती थी, अभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्यों कुछ समय सुन रही है। तो हम सब इस अभ्यास को बढ़ाएं कि हम मस्तक मणि हैं, और मैं इस मस्तक मणि स्वरूप में इस भ्रकुटी आसन पर हैं, और बाबा की मस्तक में कभी कभी जैसे गए और बैठ गए। अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को देखो, अनुभव करो। एक बार हमने दादी से ऐसे रूह रिहान करते पूछा था कि आप जब ब्रह्मा बाबा से मिलती हैं और जब शिव बाबा से मिलते हैं तो दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है। तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया था दादी ने। दादी ने कहा, जब मैं ब्रह्मा बाबा से मिलती हूं तो एक जैसे साधारण व्यक्तित्व है, ब्रह्मा बाबा जैसे लौकिक में बाप होता है ना, ऐसे बच्चों से मिलता है। लेकिन जब शिव बाबा से मिलती हूं तो बाबा का ये फरिश्ता स्वरूप है, ब्रह्मा का है तन, लेकिन वो लाइट का तन दिखाई देता है, और उस लाइट के तन में शिव बाबा जैसे आए हुए हैं, वो दोनों लाइट दिखाई देती है। बाप दादा से मिल रही हूं तो निराकार रूप में मैं नहीं मिलती हूं, अव्यक्त रूप में मिलती हूं शिव बाबा से। अव्यक्त बाबा के सामने जाके जैसे मैं रू रिहान करती हूँ, बाबा कहती हूँ बाबा आपको बच्चे बुला रहे हैं, आपको आज चलना है, आप बच्चों से मिलन मनाना है, तो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा का अवतरण देख करके उनसे बात करती हूँ, फिर उनको लेके आती हूँ मैं दोनों को। साकार ब्रह्मा बाबा से तो ऐसे जैसे कोई बाप बच्चे की रू रिहान होती है ऐसे करते हैं, उसमें शिव बाबा की लाइट नहीं दिखती मुझे, ऐसा अंतर दिखता है। तो हम भी बाप दादा को सामने इमर्ज करके कभी मस्तक के बीच में जाएं और एक तरफ बाप एक तरफ दादा हम बैठे बीच में, और कभी यहां भी आह्वान कर लो कि बाबा हम, मैं आपका बहुत शुद्ध और पवित्र बच्चा हूं, आपके लिए रथ तैयार है, आप आ जाओ। बुला सकते हो ना, यहां पर बिठा लो आकर। कितनी जगह चाहिए बाबा को? बाबा कहता मुझे तो कोई जगह चाहिए नहीं, स्पेस नहीं चाहिए ज्यादा। तो ऐसे बिठा करके बाबा से मीठी मीठी रू रिहान करो, बाप दादा के कितने समीप सानिध्य में बैठे हैं और बाबा की सारी शक्तियां मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही हैं, शांति की, पवित्रता की, सुख की, जो शक्तियां बाबा में वो सब मेरे अंदर भरपूर हो रही। आप देखेंगे इतना अच्छा अनुभव होने लगेगा। लेकिन संकल्प को सोने नहीं करना, ये संकल्प क्रिएट करना है, इस संकल्प से ही अच्छे अनुभव होंगे। तो पहला मस्तक मणि है, दूसरा नैनों का नूर हूं। जब ऐसे बैठते ना, जैसे नूर झलक रहा है ना आंखों के बीच में, प्यार में खोया हुआ है, नूर कितना छोटा सा है, बिंदु के बीच में, आत्मा का काला कोरा के बीच में वो बिंदु एकदम छोटा सा, वो नूर, मैं बाबा के नैनों का नूर हूं और बाबा मेरे नैनों का नूर है, दूसरा सोमान। तीसरा, मैं बाबा के दिल तख्त का मालिक हूं, मैं बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हूं। कभी अपने तख्त पर बिठा लो बाबा को, कभी बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाओ। चौथा, मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूं। वैसे तो दोनों हैंड जरूरी हैं, लेकिन राइट हैंड माना जो अच्छा काम, जो बाबा का स्थापना का अच्छे से अच्छा कार्य है, तन से, मन से, धन से, जो बाबा के कार्य में हम मदद कर सकते, मैं राइट हैंड हूं, पहले हूं, आगे हूं, मैं राइट हैंड भुजा हूं। और चौथा, मैं बाबा के, पांचवा, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति इतना मजा, अनुभव, अच्छे अनुभव कराती है, जो आप चलते फिरते ऐसे लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है। हम लोगों को तो कई बार इतना अच्छा अनुभव होता है, कहते आप अकेले क्यों जाते हो कहीं, साथ ले जाया करो। हमने कहा नहीं, हमारे साथ है, दिखाई नहीं देता है, रहता है साथ साथ, अनुभव करके देखो। मैं तो जब टाइप भी करता हूँ ना, कोई काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा ये देखो आकर के, इधर से आ जाओ या इधर से आ जाओ या पीछे से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। तो कंबाइंड बना करके बाबा को साथी बना लो। कंबाइंड किसके साथ रहेगा? समान के साथ रहेगा। जब आप लाइट रहोगे, उसी स्वरूप में रहोगे, तो बाबा आपके साथ आ जाएगा। अगर जरा भी भारीपन है, बोझ है, इधर उधर के संकल्प हैं, तो बाबा दूर चला जाएगा। इसलिए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। ये तपस्या के लिए पांचों समान याद रखो, रिवाइज करो सवेरे से। आंख खुलते ही मस्तक मणि, फिर कर्म में आए वह नैनों में हूं बाबा के, बाबा मुझे देख रहा है, कर्म करा रहा है, फिर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करा रहा है जो अपने दिल का मालिक बना दिया, आज्ञाकारी होके मैं बाबा के श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ, मैं बाबा की हर काम में आगे आने वाली भुजा हूँ और बाबा मेरे साथ है। ठीक है, रख सकते हैं ना स्मृति में? तो ऐसे समान स्मृति में रखते ही आपका योग लग जाएगा और तपस्या के गहन अनुभव होने लगे। गहन अनुभूति क्या है? एकदम गहरी पीसफुल स्थिति, एकदम प्योर लाइट का अनुभव, जैसे एकदम सफेद लाइट के बीच में मैं बैठी हुई हूँ, मैं तपस्वी आत्मा, बस बाबा के प्यार में खोई हूँ, बाबा की वो लाइट मेरे ऊपर आ रही है और पूरे ग्लोब पर जा रही है। सिर्फ हम नहीं ले रहे हैं, मेरे दृष्टि से, मेरे मस्तक से चारों ओर वो शांति के प्रकंपन, जो आज बाबा के स्लोगन में था ना, जब तपस्या में बैठते हो तो शांति के प्रवाह दूर दूर तक जाते, पूरे विश्व की सेवा करते। तो ऐसे तपस्वी मूर्त होकर के बैठेंगे तो डबल कार्य होगा, एक खुद भरपूर होंगे और दूसरा मेरे द्वारा कई आत्माओं को जहां जिसको जरूरत है, देने नहीं जाना कहीं। आज लाइट जल रही है पावरफुल, वो अंधेरा दूर हो रहा है, दूर दूर तक उसके किरणें जा रहे हैं। मैं अगर पावरफुल स्थिति में बैठा हूं तो वो बाबा की किरणें मेरे पर आई और वो रिफ्लेक्ट होकर के जहां जो आत्मा याद करेगी, जो जिसको जरूरत होगी मिल जाएगी, जाके मनसा सेवा हो जाएगी। तो योग के अभ्यास में हम सब ये अनुभव करेंगे। मैं आपको टाइम हो गया 7:30 तक योग कराऊंगा, कोई उठने की जरूरत नहीं ना, एक घंटा, लेकिन हिलना डुलना ज्यादा नहीं, एकाग्र होकर के अपने आसन पर बैठना। हर 15 मिनट के बाद आप थोड़ा सा 1 मिनट का गीत बजाना, 15 मिनट के बाद, और हम 1 मिनट की कमेंट्री करेंगे। अधिक कमेंट्री में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, 1 मिनट की कमेंट्री सिर्फ 15 मिनट के बाद। तो गीत जब पूरा होगा, 1 मिनट का गीत और 1 मिनट की कमेंट्री बीच में, 15 मिनट के बाद 3 स्थितियों का हम अनुभव करेंगे। 1 घंटे के योग में 3 स्थितियों का अनुभव करेंगे। पहली साकारी स्थिति, बहुत प्यार से बाबा से मीठी मीठी रूहान को अपने भाग्य का स्मरण करो। लेकिन ध्यान ये रखना, बाबा ने बड़ी अच्छी बात एक कही है कि मेरे से मिलन उन्हीं बच्चों का हो सकता है जो मेरे समान है, जो समान स्थिति में बैठ करके रू ध्यान करते। भक्ति के अंदर वो भगवान है और हम भक्त हैं, हम नीचे हैं वो ऊंचा है। ज्ञान मार्ग के अंदर बाबा अपने समान स्वरूप में मुझे देखता है, इसलिए बाबा के समान स्वरूप में बैठो, मास्टर भगवान बन करके बैठो। अपने इस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा के साथ बहुत मीठी मीठी रू ध्यान को, बाबा आपने मुझे किस कीचड़ से निकाला, किस झंझटों से बचाया, कैसा भाग्य दिया, वाह मेरा भाग्य वाह। अपने भाग्य का चिंतन करके उस नशे और खुशी में 15 मिनट ऐसे बीत जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं 15 मिनट हो गए। उसके बाद गीत बजने के बाद मैं आपको दूसरी कमेंट्री दूंगा, जिसमें आप चलना अपने सूक्ष्म वतन का, फरिश्तों की दुनिया का अनुभव करना। वो लाइट का शरीर क्या है और उस लाइट के शरीर के द्वारा बाबा से कैसे रूह ध्यान करते हैं, वो सूक्ष्म वतन का अनुभव। और फिर तीसरी स्टेज में मास्टर बीज रूप बन करके परमधाम की गहरी अनुभूति हो, कोई हलचल नहीं, कोई संकल्पों का भाव नहीं, एकदम स्थिर जैसे बाबा के साथ परमधाम की ऊंची स्थिति में बैठे हैं। तो इसलिए हम सब अभी उड़ेंगे मन और बुद्धि से। तो चलो हम सब अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठें। भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई आत्मा हूं, लाइट हूं, माइट चैतन्य सितारा हूं और भगवान का चुना हुआ रतन। बाबा से दृष्टि लेते हुए, मिलन मनाते हुए अपना भाग्य, भगवान आपने मुझे कैसे अपना बनाया। कलयुगी दुनिया से निकाल करके अपनी गोद में बिठाया, इतनी ऊंची पालना, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना अच्छा मार्गदर्शन दे करके मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य बना दिया, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य। इसी नशे और खुशी में बैठ जाओ। अरे अपने चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का भामंडल अनुभव करो। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर हूं और मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर प्रकाश में काया है। उस प्रकाश में काया को, उस लाइट के शरीर को धारण कर मैं इस जगत से पार सूर्य चांद तारागणों से भी पार अपने लाइट के वतन में ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के सानिध्य में पहुंच गई हूं। सूक्ष्म वतन की चमकती हुई लाइट और उस लाइट में बाप दादा मुझे आत्मा का आवाहन कर रहे हैं, बाबा की आवाज सुनो, आओ बच्चे, आओ बच्चे। बाबा अपने वतन में बुला रहे हैं और अपनी बाहों में समा रहे हैं। हर एक सूक्ष्म वतन की सूक्ष्म काया का अनुभव करो और बाबा की गोद में समाकर अपने मस्तक पर बाबा के लाइट का हाथ, वरदानी हस्त का अनुभव करो। बाबा मुझे सर वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, अपने समान लाइट और माइट से संपन्न बना रहे हैं। मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्तों की ड्रेस में, समूह रूप में अव्यक्त वतन में पहुंच गए हूं और बाबा बीच में हम सब बहुत सूक्ष्म फरिश्ते बाबा के पास उनके सानिध्य में बैठे हुए हैं। सूक्ष्म वतन का अनुभव करो। अभी हम सब सूक्ष्म वतन से अपने मूल वतन की यात्रा पर चलेंगे। जैसे बाबा मक्खियों के झुंड का मिसाल देते हैं, ऐसे मैं आत्मा बाबा के साथ उड़ते उड़ते अपने मूल वतन में पहुंची हूं। ज्ञान सूर्य बाबा की लाइट के नीचे अपने लाइट स्वरूप में स्थित होकर उस परम धाम की लाइट के वृक्ष में अपना स्थान फिक्स करके बाबा के सानिध्य में बैठेंगे। बाबा के शक्तियों की सकास तो पवित्रता की शक्ति, गहन शांति की शक्ति मुझ आत्मा में ट्रांसफर हो रही है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर बाप समान स्थिति में स्थित हूं। और उस परम धाम की ऊंची स्थिति से इस सरकारी वतन को लाइट दे रही हूं। बाबा की लाइट अपने ऊपर अनुभव करो और अपने द्वारा सारे ग्लोब के ऊपर शांति, शक्ति, पवित्रता की लाइट डालो। परम धाम की ऊंची स्थिति में और सब संकल्प समाप्त हो गए हैं। मैं और मेरा बाबा दोनों ही लाइट स्वरूप में शरीरी स्थिति में हैं और बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर आ रही है। मैं आत्मा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा बाबा की लाइट से प्रकाशित होकर पूरे ग्लोब को लाइट दे रहा हूं। उस आकाश इस पूरे वायुमंडल पर जा रही है। चलो परम धाम की ऊंची स्थिति का, उस निराकारी वतन का अनुभव करो।
ओम शांति। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय राजू भाई जी को बहुत 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 थैंक्स। हम सभी एक हाथ की ताली से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से तपस्या की बातें भी सुनाई, तो रियल में ऐसे ही अनुभव भी हुआ कि आत्मा जैसे शुद्ध हो गई है। इतना प्रैक्टिकल तपस्या का बल भी दिया। फिर से आपको धन्यवाद।